एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। सभी सुनने वालों का एकत्र ज्ञान गोष्ठी में बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम एक कह सकते हैं काफी गहरे और शायद थोड़े मुश्किल लगने वाले विषय पर बात करने वाले हैं।
नमस्कार। और मुश्किल जरूर है, पर जैसा आपने कहा, आज के दौर को समझने के लिए बेहद जरूरी भी।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं स्टीफन एरिक ब्रॉन्सर की किताब क्रिटिकल थ्योरी पर।
हाँ, क्रिटिकल थ्योरी नाम सुनते कई लोगों को लगता है ये तो बस यूनिवर्सिटी की बातें हैं, फिलोसफी की।
हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? ये तो हमारी जिंदगी से जुड़ी है।
बिल्कुल जुड़ी है। ये पूछती है कि भाई समाज में ताकत किसके हाथ में है, वो कैसे काम करती है, ये जो इतनी गैर बराबरी दिखती है ये है क्यों,
और मीडिया का क्या रोल है इसमें? ये फिल्में, ये खबरें, सोशल मीडिया, ये हमारी सोच को बनाते हैं या सिर्फ दिखाते हैं?
और यही क्रिटिकल थ्योरी का मकसद या कह लें रोल सामने आता है। इसका काम सिर्फ दुनिया की तस्वीर खींचना नहीं है।
तो फिर क्या है?
इसका काम है उस तस्वीर के पीछे छुपे सत्ता के खेल को, अन्याय के तरीकों को उजागर करना। एक तरह से ये समाज का एक्सरे है, जो ऊपर नहीं दिखता वो दिखाने की कोशिश।
अच्छा, मतलब सतह के नीचे झांकना।
हाँ, और आज तो इसकी जरूरत और भी ज्यादा है ना? इतनी जानकारी, इतनी खबरें, सच क्या है, झूठ क्या है,
पता ही नहीं चलता कई बार तो।
बिल्कुल। तो ऐसे में ये आलोचनात्मक नजरिया, ये क्रिटिकल अप्रोच और भी जरूरी हो जाती है।
तो ठीक है, इस नजरिए को देने वाले लेखक स्टीवन एरिक ब्रॉन्सर, इनके बारे में कुछ बताइए, कौन है ये?
स्टीफन एरिक ब्रॉन्सर रटगर्स यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के बहुत माने हुए प्रोफेसर हैं। काफी वक्त से, मतलब दशकों से, वो क्रिटिकल थ्योरी पर लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और अंग्रेजी दुनिया में तो उन्हें इस फील्ड के बड़े नामों में गिना जाता है।
और मैंने सुना है कि उन्होंने फ्रैंकफर्ट स्कूल के एक फाउंडर हर्बर्ट मार्क्यूस, उनसे डायरेक्ट सीखा है। ये तो बड़ी बात है।
हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि उनकी समझ सिर्फ किताबी नहीं है, वो उस परंपरा को अंदर से जानते हैं, उन्होंने उसे जिया है एक तरह से।
तो उनकी बात में वजन ज्यादा होगा।
यकीनन। और देखिए, उन्होंने 20 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, पर उनकी खास बात यह है कि वो बड़े मुश्किल फिलोसफिकल आइडियाज को भी आम पाठक के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एक्टिविस्ट के लिए आसान बना देते हैं।
अच्छा, मतलब सिर्फ अकादमिक दायरे तक सीमित नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं। वो मानते हैं कि ज्ञान का असली काम समाज में बदलाव लाना है, सिर्फ किताबों में बंद रहना नहीं।
तो इस लिहाज से वो इस किताब के लिए शायद सबसे सही इंसान है, क्योंकि वो जर्मनी के माहौल को भी समझते हैं जहाँ ये थ्योरी शुरू हुई,
और अमेरिका को भी जहाँ ये फैली और विकसित हुई। वो एक पुल बनाते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें ये थ्योरी अक्सर, क्या कहते हैं, डरावनी लगती है।
हाँ, या बहुत मुश्किल।
हाँ,
तो अब आते हैं किताब पर, क्रिटिकल थ्योरी। आखिर क्या है इस किताब का निचोड़, क्या कहना चाहते हैं ब्रॉन्सर?
देखिए, ये किताब एक तरह से क्रिटिकल थ्योरी का परिचय भी है और उसका एक तरह से डिफेंस भी।
बचाओ किससे?
उन आलोचनाओं से जो कहती हैं कि ये पुरानी पड़ गई है या बेकार है। ब्रॉन्सर ये साबित करते हैं कि ये सोच जो लगभग 100 साल पहले जर्मनी में जन्मी,
100 साल,
हाँ, वो आज 21वीं सदी में भी उतनी ही, शायद ज्यादा रेलेवेंट है। वो दिखाते हैं कि आज की जो बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे बढ़ती गैर बराबरी, पर्यावरण का संकट, लोकतंत्र पर खतरे,
फेक न्यूज,
हाँ, फेक न्यूज का जाल, इन सबको समझने में ये थ्योरी कैसे मदद करती है।
और ये सिर्फ समझने की बात नहीं है जैसा आपने पहले कहा।
नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं देखना चाहते, जो जानना चाहते हैं कि सिस्टम काम कैसे करता है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, और जो उम्मीद रखते हैं कि इसे बेहतर बनाया जा सकता है।
मतलब सिद्धांत को एक्शन से जोड़ने की कोशिश।
बिल्कुल। ब्रॉन्सर हमें एक सफर पर ले जाते हैं। कहानी शुरू होती है 1920-30 के जर्मनी से, फिर नाजी दौर आता है, ये विचारक देश छोड़ते हैं, अमेरिका जाते हैं,
उनके अपने अनुभव।
हाँ, और फिर युद्ध के बाद यूरोप वापसी। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे बाहरी हालात ने उनके विचारों को बदला, उन्हें नई शक्ल दी।
लेकिन ये सिर्फ हिस्ट्री लेसन नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। जोर इस बात पर है कि वो पुराने विचार आज कैसे लागू होते हैं, जैसे मीडिया कैसे हमारी राय बनाता है, ये जो कंज्यूमर कल्चर है, हर चीज खरीदो इस्तेमाल करो, ये हमें कैसे कंट्रोल करता है, पर्यावरण क्यों तबाह हो रहा है, क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की दिक्कत है या हमारी सोच की भी,
या आजकल की राजनीतिक बहसें, तर्क कम शोर ज्यादा क्यों?
बिल्कुल। इन सब सवालों के जवाब खोजने में ये किताब एक फ्रेमवर्क देती है,
और ये उन गलत फहमियों को भी दूर करती है जो फैली हुई हैं, जैसे इसे मार्क्सवाद समझ लेना।
हाँ, बहुत लोग इसे सीधे सीधे मार्क्सवाद या पोस्ट मॉडर्निज्म मान लेते हैं। ब्रॉन्सर समझाते हैं कि ये उनसे कैसे जुड़ी है, कहाँ अलग है, और इसका अपना यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है।
तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। किताब के हिसाब से ये क्रिटिकल थ्योरी शुरू कहाँ से हुई, इसकी जड़ें कहाँ हैं?
हाँ, तो जैसा आपने कहा, ये अचानक से नहीं आई। इसकी जड़ें 19वीं सदी के कुछ बड़े थिंकर्स में हैं। शुरुआत होती है हेगल से।
हेगल?
हाँ, उनका एक बहुत पावरफुल आइडिया था द्वंद्ववाद या डायलेक्टिक, मतलब कि इतिहास सीधा सीधा आगे नहीं बढ़ता।
अच्छा, फिर कैसे?
विचारों में टकराव होता है, थीसिस एंटीथीसिस, और उस टकराव से कुछ नया निकलता है, सिंथेसिस। तो समाज कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, वो लगातार बदल रहा है, बन बिगड़ रहा है।
ओके, और फिर मार्क्स, उनका तो बहुत असर रहा होगा।
बहुत ज्यादा। मार्क्स के कई आइडियाज अहम हैं, जैसे ऐतिहासिक भौतिकवाद कि समाज का ढांचा उसकी आर्थिक व्यवस्था पर टिका होता है। फिर अलगाव या एलियनेशन, कैसे पूंजीवाद में एक मजदूर या कर्मचारी अपने काम से ही कट जाता है, उसे लगता है वो बस एक मशीन का पुर्जा है।
हाँ, अपने बनाए सामान से भी कोई जुड़ाव नहीं रहता।
बिल्कुल। और तीसरा, कमोडिटी फेटिशिज्म, कैसे बाजार में चीजों की सिर्फ कीमत दिखती है, उसके पीछे की मेहनत, इंसान, रिश्ते सब गायब हो जाते हैं।
ये तो आज भी बहुत सच लगता है।
एकदम। फिर फ्रॉइड का भी बड़ा रोल है, सिगमंड फ्रॉइड।
मनोविज्ञान वाले?
उनका क्या लेना देना?
उनका बहुत लेना देना है। फ्रॉइड ने हमारे अचेतन मन की बात की, अनकॉन्शियस की बात की, बताया कि कैसे समाज हमारी इच्छाओं को दबाता है।
रिप्रेशन। इससे ये समझ आया कि समाज के नियम सिर्फ बाहर से थोपे नहीं जाते, वो हमारे अंदर बैठ जाते हैं। हमारे डर, हमारी इच्छाएं, हमारा बर्ताव सब अनजाने में कंट्रोल होता है।
मतलब दिमाग के लेवल पर भी कंट्रोल।
बिल्कुल। और फिर आते हैं मैक्स वेबर।
मैक्स वेबर? हाँ।
उन्होंने आधुनिक समाज के तार्किकीकरण को समझा, खासतौर पर साधनात्मक तर्क को।
साधनात्मक तर्क, ये क्या है?
मतलब ऐसा तर्क जो सिर्फ ये देखता है कि किसी लक्ष्य को पाने का सबसे कारगर, सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है, नफा नुकसान हिसाब किताब।
और इसमें बुराई क्या है? एफिशिएंसी तो अच्छी चीज है।
वेबर ने चिताया था कि ये तर्क जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसानियत पीछे छूट जाती है। उन्होंने इसे लौह पिंजरा कहा, एक ऐसा सिस्टम जहां नियम, कायदे, ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो जाती हैं कि इंसान बस एक पुर्जा बन के रह जाता है, उसके अपने मूल्य, उसकी भावनाएं सब बेकार।
ओह, ये तो सच में सोचने वाली बात है। कभी कभी लगता है हम सब किसी न किसी पिंजरे में फंसे हैं।
बिल्कुल। तो इन्हीं सब विचारों पर, हेगल, मार्क्स, फ्रॉइड, वेबर, इनकी नींव पर खड़ा हुआ फ्रैंकफर्ट स्कूल।
अच्छा, आप आई कहानी फ्रैंकफर्ट स्कूल की।
हाँ, 1923 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में एक इंस्टीट्यूट बना, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च। इनका मकसद था मार्क्सवाद को जिंदा करना, उसे अपडेट करना, उसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, फिलॉसफी सबसे जोड़कर एक नई, ज्यादा आलोचनात्मक, इंटरडिसिप्लिनरी समझ बनाना।
और उस वक्त का माहौल कैसा था जर्मनी में?
माहौल बहुत तनाव भरा था। वर्ल्ड वॉर के बाद की उथल पुथल, जर्मनी में क्रांति फेल हो चुकी थी, फांसीवाद का खतरा बढ़ रहा था, रूस में स्टालिन थे, मार्क्स की भविष्यवाणियां उतनी सीधी साबित नहीं हो रही थी। फिर नाजी आ गए। इनमें से ज्यादातर विचारक यहूदी थे तो उन्हें भागना पड़ा, ज्यादातर अमेरिका गए। इन सब चीजों ने, मतलब निर्वासन ने, फांसीवाद के अनुभव ने, उनकी सोच को बहुत गहराई दी।
तो पहली पीढ़ी में कौन कौन थे मुख्य लोग?
हॉर्कहाइमर थे, जो डायरेक्टर थे, अडोर्नो, बहुत बड़े दार्शनिक, हर्बर्ट मार्क्यूस, जिनका जिक्र हमने किया, और वॉल्टर बेंजामिन।
ओके, और इनका सबसे जरूरी काम?
शायद अडोर्नो और हॉर्कहाइमर की किताब डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट, ज्ञानोदय का द्वंद्ववाद। ये थोड़ी मुश्किल है पर बहुत अहम।
क्या कहती है किताब?
ये एक चौंकाने वाली बात कहती है कि ज्ञानोदय, जिसने हमें तर्क और विज्ञान के जरिए आजाद कराने का वादा किया था, वो खुद ही अपनी दुश्मन बन गई।
लेकिन कैसे? तर्क कैसी दुश्मन बन सकता है?
उनका कहना था कि जिस तरह का तर्क हावी हुआ, वही वेबर वाला साधनात्मक तर्क, वो सिर्फ चीजों को कंट्रोल करने, उनका इस्तेमाल करने पर जोर देता है। उसने प्रकृति को और इंसान को भी सिर्फ एक चीज, एक संसाधन बना दिया। और यही ठंडा हिसाब किताब वाला तर्क फैक्ट्री के पीछे भी है और नाजी डेथ कैंप के पीछे भी। दोनों जगह इंसान की कोई कीमत नहीं, वो बस एक नंबर है।
ये तो बहुत डार्क बात है।
हाँ, और इसी का एक उदाहरण उन्होंने दिया कल्चर इंडस्ट्री के रूप में।
कल्चर इंडस्ट्री मतलब संस्कृति का उद्योग।
हाँ, उनका कहना था कि पूंजीवाद में कला, संगीत, फिल्में, ये सब अब सच्ची कला नहीं रही, ये फैक्ट्री बन गई हैं। एक जैसा माल बनाती हैं, गाने, फिल्में, जो पहले से पता होता है कि बिकेगा।
और इनका मकसद क्या है सिर्फ पैसा कमाना?
पैसा कमाना तो है ही, पर उससे ज्यादा है लोगों को निष्क्रिय बनाना। ऐसे उपभोक्ता तैयार करना जो सवाल ना करें, बस चीजें कंज्यूम करें।
मतलब मनोरंजन के नाम पर दिमाग को सुन कर देना।
बिल्कुल, ये पॉपुलर कल्चर हमें बहलाता है, पर असल में हमें सिस्टम से खुश रखता है। हमारी आलोचना करने की क्षमता को कुंद कर देता है। सोचिए जरा आजकल की वेब सीरीज या ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में।
हाँ, वो हमें कितना सोचने पर मजबूर करती हैं, या सिर्फ टाइम पास है।
सही सवाल। इसी दौर में एक और स्टडी आई, द अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी,
अधिनायकवादी व्यक्तित्व।
हाँ, अडॉर्नो और उसके साथियों ने रिसर्च की कि कुछ खास तरह के लोग क्यों फासीवादी प्रचार के शिकार आसानी से हो जाते हैं।
कैसे लोग?
जो अपनी सोच में बहुत रिजिड होते हैं, सत्ता के आगे झुकते हैं, और जो उनसे अलग है उससे नफरत करते हैं। रिसर्च ने इसे बचपन के दमनकारी माहौल और अंदरूनी असुरक्षा से जोड़ा।
ये तो आज भी दिखता है।
हाँ, अब आते हैं हर्बर्ट मॉट्यूस पर। उन्होंने फ्रायड को थोड़ा अलग, ज्यादा उम्मीद के साथ पढ़ा।
अच्छा, कैसे?
उनकी किताब थी इरोस एंड सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा कि हमारी सभ्यता हमसे जरूरत से ज्यादा मनोवैज्ञानिक दमन, सरप्लस रिप्रेशन मांगती है, ताकि हम बस मशीन की तरह काम करते रहें।
लेकिन इसमें उम्मीद कहाँ है?
उम्मीद ये कि शायद एक ऐसा समाज बन सकता है जहां टेक्नोलॉजी हमारी मेहनत कम कर दे, और हमारी एनर्जी, हमारी लाइफ फोर्स, जिसे फ्रायड ने इरोस कहा, वो क्रिएटिविटी और खुशी के लिए आज़ाद हो।
ये तो अच्छी कल्पना है।
हाँ, पर मार्क्यूस सबसे ज्यादा जाने गए अपनी 1964 की किताब वन डायमेंशनल मैन के लिए।
एक आयामी मनुष्य।
हाँ, और ये आज भी इतनी सटीक लगती है। उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल समाज है, उसने कंट्रोल का एक नया, ज्यादा चालाक तरीका ढूंढ लिया है।
चालाक तरीका वो क्या है?
अब वो सीधे डंडा नहीं मारता, वो आपकी जरूरतें पूरी करता है। आपको ढेर सारी चीजें देता है खरीदने को, चुनने को। आपको लगता है आप आजाद हैं,
जैसे 10 तरह की शैम्पू में से चुनना।
बिल्कुल, पर मार्क्यूस कहते हैं कि ये चुनने की आजादी नकली है। ये आपको असली मुद्दों से, गैर बराबरी, अन्याय, पर्यावरण से भटकाती है। समाज एक आयामी बन जाता है, मतलब सोचने का बस एक ही तरीका रह जाता है सिस्टम के अंदर रहने का। विरोध की आवाज दब जाती है या सिस्टम उसे अपने में मिला लेता है।
कोई उदाहरण?
जैसे रिप्रेसिव डिसब्लिमेशन का आइडिया, मतलब समाज आपको थोड़ी छूट देता है, थोड़ी मौज मस्ती कर लो, थोड़ी सेक्सुअल आज़ादी ले लो, ताकि आपकी एनर्जी इन्हीं चीज़ों में निकल जाए
और आप बड़े सिस्टम पर सवाल न उठाएं।
एग्जैक्टली, एक तरह का सेफ्टी वॉल्व।
ये तो बहुत ही सूक्ष्म तरीका है कंट्रोल का।
हाँ, और हमें वॉल्टर बेंजामिन को भी नहीं भूलना चाहिए। उनका वो मशहूर लेख था कला पर।
हाँ, मैकेनिकल रिप्रोडक्शन वाला।
सही, उन्होंने कहा कि फोटोग्राफी, फिल्म जैसी तकनीकें कला की पुरानी आभा शायद खत्म कर दें, पर वो उसे डेमोक्रेटाइज भी करती हैं। ज्यादा लोग तक पहुंचाकर उसे राजनीतिक चेतना जगाने का हथियार बना सकती हैं।
तो ये थी पहली पीढ़ी। काफी निराशावादी लगती है, खासकर अडोर्नो।
हाँ, उनमें निराशावाद काफी है। लेकिन फिर दूसरी पीढ़ी आई, और उसमें सबसे बड़ा नाम है यूर्गेन हाबरमास का। उन्होंने इस निराशावाद से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश की।
हाबरमास, हाँ, सुना है नाम। उन्होंने क्या अलग कहा?
उन्होंने कहा कि तर्क पूरी तरह खराब नहीं है। दो तरह के तर्क होते हैं, एक तो वही साधनात्मक तर्क, बस लक्ष्य पाना है,
जैसे मुनाफा।
हाँ, और दूसरा है संवादात्मक तर्क, यानी ऐसा तर्क जो दूसरों को समझने, उनसे बात करने, बहस करने और आपसी सहमति बनाने पर जोर देता है।
मतलब बातचीत वाला तर्क।
बिल्कुल, जो जोर जबरदस्ती से नहीं, दलील से चलता है।
ये तो बहुत पॉजिटिव लगता है।
हाँ, और उन्होंने दो और जरूरी कॉन्सेप्ट दिए, लाइफ वर्ल्ड और सिस्टम।
लाइफ वर्ल्ड और सिस्टम, ये क्या है?
लाइफ वर्ल्ड है हमारी रोजमर्रा की दुनिया, हमारे रिश्ते, भाषा, कल्चर, जहां हम एक दूसरे को समझते हैं, जहां मीनिंग बनता है। और सिस्टम है राज्य और बाजार, सरकार, कानून, अर्थव्यवस्था।
अच्छा, तो दिक्कत क्या है?
हैबरमास कहते हैं कि दिक्कत यह है कि सिस्टम का ठंडा साधनात्मक तर्क हमारे लाइफ वर्ल्ड पर हावी होता जा रहा है, उसका उपनिवेशीकरण कर रहा है।
उदाहरण?
जैसे जब ऑफिस का प्रेशर या पैसे की चिंता हमारे रिश्तों पर, हमारी शांति पर हावी हो जाए, जब दोस्ती भी नेटवर्किंग बन जाए।
ये तो होता है। तो फिर उम्मीद कहाँ है हैबरमास के लिए?
उम्मीद है पब्लिक स्फीयर में, एक ऐसा सार्वजनिक दायरा जहां लोग बिना डरे बराबरी से खुलकर बहस कर सकें, अपनी बात कहें, दूसरों की सुने, एक आदर्श भाषण स्थिति जहां पैसे या ताकत का नहीं, सिर्फ बेहतर दलील का जोर चले।
क्या ऐसा पब्लिक स्फीयर आज मुमकिन है सोशल मीडिया के जमाने में?
ये बड़ा सवाल है। ब्रॉन्सर भी इस पर बात करते हैं। वो यही दिखाते हैं कि हेबोमास और पहले के विचारकों के ये सारे आइडियाज आज कितने काम के हैं। ग्लोबलाइजेशन हो, सोशल मीडिया हो, जो शायद नई कल्चर इंडस्ट्री है, नफरती राजनीति हो या न्याय के आंदोलन, इन सबको समझने के लिए क्रिटिकल थ्योरी जरूरी टूल्स देती है।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ खास बातें या थीम्स क्या निकलती है? मेरे लिए तो सबसे पहली है साधनात्मक तर्क की आलोचना। ये मानना कि सिर्फ हिसाब किताब ही सब कुछ है, यही गड़बड़ है।
बिल्कुल, ये हमें अपनी तरक्की की सोच पर ही सवाल उठाने को कहता है। क्या GDP बढ़ना ही तरक्की है अगर इंसान खुश नहीं है?
सही बात, और ये तो हर जगह दिखता है, दफ्तरों में, राजनीति में।
दूसरी बड़ी थीम है कल्चर इंडस्ट्री और चेतना का हेरफेर। कैसे मीडिया, विज्ञापन, फिल्में, अब सोशल मीडिया हमारी सोच को कंट्रोल करते हैं, हमें खास तरह का उपभोक्ता बनाते हैं, समाज को बनाते हैं, समाज हमें बनाता है। हमारी निजी दिक्कतें अक्सर बड़ी सामाजिक समस्याओं का ही हिस्सा होती हैं।
चौथा, मेरे ख्याल से आलोचना में ही मुक्ति की उम्मीद। मतलब सिर्फ ये समझ लेना कि सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे हमें कंट्रोल किया जाता है, ये अपने आप में एक आज़ादी है।
बिल्कुल, विरहस्यकरण, पर्दा हटाना। जब आप पिंजरा देख लेते हैं तभी उससे निकलने का सोच सकते हैं।
और पांचवा, जो आपने शुरू में भी कहा था, सिद्धांत और व्यवहार को जोड़ना, प्रैक्सिस। ये सिर्फ सोचने की थ्योरी नहीं है बल्कि दुनिया को बदलने के एक्शन से जुड़ी है, यही इसका असली रोल और गोल है।
बिल्कुल सही।
इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो सच में सोचने पर मजबूर करती हैं, कुछ ऐसे कोट्स या विचार साझा करते हैं।
हाँ, एक बहुत अहम है, समाज की आलोचना चेतना की आलोचना है। मतलब समाज बदलना है तो पहले लोगों की सोच बदलनी होगी, इसीलिए कल्चर, मीडिया, साइकोलॉजी इतनी जरूरी हैं।
और वॉल्टर बेंजामिन की वो बात, सभ्यता का कोई भी दस्तावेज ऐसा नहीं है जो साथ ही बर्बरता का दस्तावेज ना हो।
हाँ, ये याद दिलाता है कि हर तरक्की की एक कीमत होती है जो अक्सर कोई और चुकाता है।
अडोर्नो का वो कथन, संपूर्ण असत्य है, ये मुझे बहुत पसंद आया।
हाँ, मतलब कोई भी सिस्टम या थ्योरी जो दावा करे कि उसे सब पता है वो गलत है। सच्चाई हमेशा जटिल होती है, अधूरी होती है।
और कल्चर इंडस्ट्री पर, कल्चर इंडस्ट्री लगातार अपने उपभोक्ताओं को उस चीज से वंचित करती है जिसका वो लगातार वादा करती है।
झूठे वादे, नकली संतुष्टि। बिल्कुल,
माकूस की वो बात भी, उन्नत औद्योगिक सभ्यता में एक आरामदायक, सहज, उचित, अलोकतांत्रिक स्वतंत्रता व्याप्त है।
हाँ, वो नकली आजादी जो हमें असली मुद्दों से भटकाती है।
और आखिर में हेबोमास की उम्मीद, सामाजिक आशा का अंतिम स्रोत रोजमर्रा की बातचीत में निहित तार्किक क्षमता में है।
संवाद की ताकत, अगर हम ढंग से बात कर पाए तो शायद रास्ता निकल आए।
तो ये सब विचार तो बहुत गहरे हैं, पर क्या इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई प्रैक्टिकल यूज है?
अरे बिल्कुल है। सबसे पहले तो मीडिया लिटरेसी, ये थ्योरी हमें सिखाती है कि हम जो देख सुन रहे हैं उस पर सवाल उठाएं।
कैसे?
पूछें, ये कौन दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, किसका नजरिया है, क्या ये मुझे सोचने दे रहा है या सिर्फ बहला रहा है। अगली बार कोई न्यूज देखें या एड तो ये सवाल जरूर पूछें।
अच्छा पॉइंट है। और
काम की जगह पर सोचिए कि आपकी ऑफिस में क्या सिर्फ टारगेट और नंबर ही अहम है, या लोगों की खुशी, उनकी मेंटल हेल्थ का भी कोई मोल है? कहीं आप भी उस लॉ पिंजरे में तो नहीं फंस रहे?
सोचने वाली बात है।
शिक्षा में भी, क्या हमारे स्कूल सिर्फ रटना सिखा रहे हैं या सवाल करना भी? क्या वो बच्चों को समाज को आलोचनात्मक नजर से देखना सिखा रहे हैं?
राजनीति में भी तो इसका इस्तेमाल हो सकता है।
बिल्कुल, सिर्फ नेताओं के भाषण सुनने की बजाय ये समझने की कोशिश करें कि कौन सी विचारधारा काम कर रही है, किसके फायदे की बात हो रही है, क्या सच्ची बहस हो रही है या सिर्फ शोर।
और सामाजिक न्याय के मुद्दों में,
हाँ, जैसे पर्यावरण का मुद्दा सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारे सिस्टम का भी मुद्दा है। कैसे अलग अलग तरह के अन्याय, जाति, लिंग, आर्थिक आपस में जुड़े हुए हैं, ये समझने में भी मदद मिलती है।
यहाँ तक कि निजी रिश्तों में भी।
हाँ, सोचिए कि कहीं आपके रिश्तों में भी तो पावर डायनेमिक्स नहीं है। क्या आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या समझने की? आपसी सम्मान और बराबरी वाले रिश्ते कैसे बने?
वाह, तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, सच में जिंदगी में लागू हो सकती हैं।
बिल्कुल।
तो इस पूरी बातचीत के बाद आपके लिए सबसे बड़ी टेक अवे या सीख क्या रही?
मेरे लिए तो वही प्रैक्सिस वाली बात, ज्ञान सिर्फ जमा करने के लिए नहीं है बल्कि उसे इस्तेमाल करने के लिए है, दुनिया को थोड़ा बेहतर समझने और शायद थोड़ा बेहतर बनाने के लिए। सोचना और करना साथ साथ।
और मेरे लिए आलोचना के साथ उम्मीद को जिंदा रखना। क्रिटिकल थ्योरी बहुत तीखी आलोचना करती है, कई बार लगता है सब कुछ खराब है, पर उसके मूल में हमेशा इंसान की आज़ादी और एक बेहतर दुनिया की चाहत है। ये यथार्थवादी आलोचना और उम्मीद का एक मुश्किल संतुलन साधती है।
बिल्कुल, और ये भी कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं है, वो एक कल्चर है जिसे लगातार सींचना पड़ता है, आलोचनात्मक सोच से, खुली बहस से, संवाद से।
सही कहा। तो अंत में ब्रॉन्सर की किताब यही दिखाती है कि क्रिटिकल थ्योरी आज भी उतनी ही जरूरी है। ये हमें अपनी उलझी हुई दुनिया को समझने, सत्ता के खेल को पहचानने और बदलाव के लिए आवाज उठाने की ताकत देती है।
हाँ, ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया को बदलने का पहला कदम है उसे ठीक से आलोचनात्मक नजर से समझना, और शायद यही इसका सबसे अहम रोल और मकसद है।
तो हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में, आपके काम में, आपके रिश्तों में कहाँ सिस्टम आपके लाइफ वर्ल्ड पर हावी हो रहा है और कहाँ आप सच्ची बातचीत और समझ की जगह बना सकते हैं। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।